नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट क्षमता निर्माण और सुधारों पर केंद्रित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे युवा शक्ति संचालित बजट बताया। वित्त मंत्री ने लगातार अपना नवा बजट पेश करते हुए खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए बजट में नेशनल फाइबर स्कीम और नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेटेड कार्यक्रम का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करके भविष्य के चैंपियन एसएमई बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड पेश किया। वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिकी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्याय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा हेतु बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया। सरकार विकसित भारत के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर एक उच्च अधिकार प्राप्त स्थायी समिति का गठन करेगी। सरकार खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करेगी। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह उनका रिकॉर्ड 9वां बजट था। बजट 2026 और 27 विशेष रूप से क्षमता निर्माण और सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्त मंत्री ने इसे युवा शक्ति संचालित बजट कहा। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल देते हुए ढांचागत सुधारों, राजकोषीय वित्तव्ययिता और मौद्रिक स्थिरता का अनुसरण किया। वित्त मंत्री ने 6 सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल है। वित्त मंत्री ने भारत को एक वैश्विक जैव औषध विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्याय का प्रस्ताव किया। इससे जैविक घरेलू उत्पादन के लिए परिवेश तैयार होगा। देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार करने वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण से आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण के शुभारंभ का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के विकास और कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष 22,919 करोड़ रुपए के परिव्याय से आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना के लिए पहले ही लक्ष्य से 2 गुना निवेश की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी है। इस गति का पूरा लाभ लेने के लिए योजना के लिए परिव्याय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कपड़ा सेक्टर के लिए एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया। इसमें रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर तथा मानव निर्मित फाइबर और आधुनिक फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, पूंजीगत सहायता से पारंपरिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के उन्नयन के लिए समर्थ कार्यक्रम के दूसरे चरण का प्रस्ताव शामिल है। वित्त मंत्री ने इनके अतिरिक्त मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने तथा खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के शुभारंभ का प्रस्ताव किया। सूक्ष्म, लघु और उद्यमों को विकास का महत्वपूर्ण इंजन बताते हुए वित्त मंत्री ने चैंपियंस के रूप में इन्हें विकसित करने के लिए 3 सूत्री उपायों का प्रस्ताव किया। इन उपायों में इक्विटी सहायता, नगदी सहायता और पेशेवर सहायता शामिल है। वित्त मंत्री ने इन उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लघु मध्यम उद्यम विकास निधि शुरू करने का प्रस्ताव किया। सूक्ष्म उद्यमों की मदद और पूंजी जोखिम से बचाने के लिए वर्ष 2021 में 2000 करोड़ रुपए से निर्मित आत्मनिर्भर भारत निधि को और सशक्त बनाने का प्रस्ताव किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में बुनियादी ढांचा विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक पूंजी व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई है। ये वित्त वर्ष 2014 और 15 में 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष तक 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस गति को बनाए रखते हुए वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 में इस आवंटन को बढ़ाकर 12,20,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। बुनियादी ढांचा विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के प्रति निजी डेवलपर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचा जोखिम गारंटी निधि बनाने का प्रस्ताव किया। कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने पूर्व में दांकुने से पश्चिम में सूरत को जोड़ने वाले नया माल दुलाई कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा अगले 5 वर्ष में ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से आरंभ करते हुए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग परिचालित किए जाएंगे। अंतर्देशीय जलमार्ग की जरूरतें पूरी करने के लिए बनारस और पटना में जहाज मरम्मत केंद्र स्थापित किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने तथा अंतिम छोर और दूरदराज के क्षेत्र को जोड़ने के लिए वित्त मंत्री ने समुद्री विमान के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव किया। इसके लिए समुद्री विमान VG का F योजना शुरू की जाएगी। पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ कनेक्टर के रूप में 7 उच्च गति के रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। ये कॉरिडोर है मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय अनुसंधान कोष तथा अनुसंधान विकास और नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इससे किसानों, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांग जन के हित में विशेष अवसर उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 दशक से जारी सुधार प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोग विभिन्न स्तरों पर गरीबों से ऊपर उठेंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से खेलकूद प्रतिभाओं के सुव्यवस्थित विकास के प्रयासों को जारी रखते हुए वित्त मंत्री ने अगले दशक में खेलकूद क्षेत्र में बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026 और 2027 को ऐतिहासिक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि ये बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये बजट देश हित में है और इससे देश के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और ये बजट विकसित भारत के सपने का आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से MSME क्षेत्र को व्यापक समर्थन मिला है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने दिबांग वैली जिला मुख्यालय अनिनी में हुई बैठक में अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन संशोधन अध्यादेश 2025 को एक विधेयक से प्रतिस्थापित करने को मंजूरी दी। इस संशोधन के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी को भी वर्तमान अधिकारियों के साथ APSSB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी है। कैबिनेट ने APPSC के कार्य संचालन को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए वन मैन जांच आयोग द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपायों को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने विशेष शिक्षा में 150 शिक्षण पद, जिला परिषदों में 99 जूनियर इंजीनियर और 99 अपर डिवीजन क्लर्क पदों के साथ साथ पंचायती राज निदेशालय के अंतर्गत LDC और डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अतिरिक्त पदों को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने बैटल ऑफ माइंस, स्पेलिंग विजार्ड तथा गणित और विज्ञान ओलंपियड जैसे प्रतिभा कार्यक्रमों को वार्षिक कैलेंडर कार्यक्रम के रूप में आयोजित करने की भी स्वीकृति दी। अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है। शैक्षणिक मामलों के डीन प्रोफेसर प्रकाश चंद्र जैना को उनकी खोज इंटरैक्टिव लिटरेसी पेन फॉर एडल्ट लर्नर्स के लिए भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा डिजाइन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।